नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंट्री पेट्री ओप्रियो, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोपके और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओजलहास बेतेनोव से मिलेंगे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन आज एक अनुसंधान संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसमें एस्टोनियो के राष्ट्रपति अलार कारिस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति चर्चा में भाग लेंगे। इस सत्र में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की समग्र दृष्टि, प्राथमिकताएं और कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों से परे वैश्विक विकास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नया आकार देगा विषय पर एक सत्र निर्धारित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों की साझेदारी बन गई है।
फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है।
भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि दोनों देश अब सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया टेक टैलेंट और स्टार्टअप्स के लिए नए प्रोत्साहनों की भी घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल प्रधानमंत्री मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता 2026 में फ्रांस करेगा। G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं का वार्षिक सम्मेलन है। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को असम के गुवाहाटी स्थित सरुजाई स्टेडियम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 87वीं वर्षगांठ परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। CRPF पहली बार पूर्वोत्तर में वर्षगांठ परेड आयोजित कर रहा है। यह अवसर CRPF कर्मियों की सेवा, बलिदान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करने का होगा। गुजरात में निर्वाचन आयोग ने 3.5 महीने की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 4,40,30,725 है। मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद 5,60,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में हेराफेरी और डेटा सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में 4 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार प्रशासन के अंतर्गत लगभग 18 महीने की अनिश्चितता के बाद ये नया राजनीतिक अध्याय है। खाड़ी देशों में आज से रमजान का पवित्र महीना आरंभ हो रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की चांद दर्शन समितियों ने कल शाम रमजान 1447 हिजरी शुरू होने की पुष्टि की। कतर और कुवैत के अधिकारियों ने भी खगोलीय गणनाओं के अनुसार 18 फरवरी को रोजे का पहला दिन घोषित किया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने नेपाल को 171 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में नेपाल की टीम ने 19 ओवर और 2 गेंद में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।